ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் கைவல்யோபனிஷத் இன் ஹிந்தி, பிரசன்டட் பை சுவாமி ஆச்சாரிய சுவாமி ஸ்ரீ பகவதானந்த்ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
नारायण नारायण नारायण. देखो महात्माओं की हमारे ऊपर कितनी कृपा है. तो मैं कह रहा था कि वासना की जहां पूर्ति हुई इच्छा की, वहीं तुरंत लोग फिर होए फिर होए फिर होए. और इच्छा की अपूर्ति का नाम क्रोध है. वहां क्रोध हो गया, बस गुस्सा हो गई. तो ये जो सबॉर्डिनेट जिनको आप कुर्सी में समझते हो, जब आप सरकने के लिए तैयार नहीं तो ये कैसे तुम्हारे कहने से सरक जाएंगे भाई. आजकल यही झगड़ा है घरों में, प्रायः यही झगड़ा होता है. वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपना सरकना सरकाना चाहते हैं और वो उन्हें सरकाना चाहते हैं और कोई सरकने के लिए तैयार नहीं. तो यहां जो शब्द आए, यथा चिरा सर्व पापम विधूय परात्परम पुरुषम, वो पाप है. अविद्या, वो प्रश्न था अथकेन प्रयुक्तोयम. तो अविद्या और तत्कार्य, तो भगवान ने जो उत्तर दिया वो बताया ये है पाप. असल में काला गोरा लंबा चौड़ा ये तो कुछ है नहीं. अब निकला क्या, तो जिन चीजें निकली वो व्यक्ति हो सकता है जो निश्चिंत निर्द्वंद निर्भय. तीन बातें हैं भाई, निश्चिंत निर्द्वंद द्वौच द्वौचिति द्वंद्व और विनिर्गता चिंता. यस्मात, जिसके मन से बिल्कुल चिंता निकल गई और द्वंद निकल गया. निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पद्म अव्ययम तत. उस अव्यय पद को प्राप्त करता. तो यहां आसुलायन जी ने जो बड़े महत्व की बात पूछी कि महाराज ये इतना भयंकर है और अंतःकरण को मलिन करने वाला है और मल विक्षेप आवरण तीनों दोष इसी के कारण आते हैं, ये कैसे नष्ट हो. तो देखो बड़ी सूक्ष्म शैली है और बहुत संक्षेप में प्रश्न किया गया, संक्षेप में ही उत्तर भी दिया गया. अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ये तो सबको मालूम है कि हमारी इच्छाएं कामनाएं वासनाएं ही हमको कारण रूप में दुख देती हैं, क्योंकि पाप का फल दुख होता है. ये मालूम है सबको, जब दुख आता है तो मुझे कोई पाप किया होगा, अशुभ निकल रहा है. और जब सुख आता है तो कहते भाई पुण्य है, इससे सुख मिल रहा है. तो ये जब मालूम हो गया कि पाप पुण्य यही सुख और दुख के नियामक हैं, और व्यक्ति चाहता क्या है, सुख चाहता है लेकिन पुण्य नहीं चाहता, पुण्य नहीं करना चाहता है, सुख चाहता है, और पाप करता है लेकिन दुख नहीं भोगना चाहता. ये ईमानदारी की बेईमानी देख ले. जब भाई दुख भोगने के लिए तुम तैयार नहीं तो अशुभ कर्म पाप न करो, वही तो कारण है उसका. और यदि तुम्हारा नहीं समझ में आई ये बात तो बात दूसरी, लेकिन ये तो सब समझा हुआ है ना. तो यहां सुलायन जी ने उत्तर प्रश्न किया है, वो बड़ा महत्व का है, इस पर बड़ा मनन करना चाहिए. और इसीलिए सर्व शब्द दे दिया. ये कामनाएं हमको नचा रही हैं और इसी के कारण जन्म मरण होता रहता है, और क्या बतावें, इसके लिए कोई पुरुषार्थ काम नहीं देता है. व्यक्ति प्रेय की ओर बढ़ रहा है, श्रेय की ओर कहां बढ़ रहा है. जो व्यक्ति जो साधक है वो भगवान की भी प्रार्थना करता है, हे भगवान आपसे हमको चाह रहे हैं। भगवान को कोई नहीं चाहता, भगवान से चाह रहे। मुकदमा जीत जाए, बेटा नहीं बेटा हो जाए, अमुक हो जाए, कुछ न कुछ एप्लीकेशन अपनी दिए रहता है। तो भगवान से चाह है, भगवान को चाह नहीं है। और वही दुनिया वाले भी हैं, आपको थोड़ी चाहते हैं, आपसे चाहते हैं। तो ये पाप कैसे दूर हो, सर्व पापम विधूय। फिर कहते हैं चौथी बात, परात परम पुरुषम। उस परा माने माया, और उससे परे जिस माया ने ये सब खेल रच दिया है जगत का, उस माया से परे परात पर परमात्मा, वो परमात्मा हमारी साक्षात अपरोक्ष आत्मा के रूप में कैसे दिखे, कौन देखते हैं? बोले विद्वान। ये बड़ा महत्व का शब्द रख दिया। विद्वान माने किसी एक विषय को जानने वाला नहीं होता है। कोई सिलाई करने वाला है तो सिलाई में विद्वान बता दे। किसी ने हमारे संस्कृत में अलग अलग विषय होते हैं, व्याकरण है, साहित्य है, ज्योतिष है, न्याय है, किसी ने एक में आचार्य कर लिया, अब वो विद्वान हो गया। यत्र वैदिका तत्र न वैयाकरणा, अयत्र वैयाकरणा तत्र न वैदिका। तो वैदिक जो लोग होते हैं स्वर से बोलते हैं, वहां जब गए शास्त्रार्थ करने तो बोले भाई वैदिक हम नहीं हैं। और जहां व्याकरण वाले गए वहां कह दिया हम भाई वैदिक हैं, हम व्याकरण जानते नहीं। तो ऐसे काम वैसे विद्वान नहीं। यथा नंद्यः चंद्रमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। स्पष्ट ज्यों का त्यों कर दिया। विद्वान वो है जैसे संपूर्ण नदियां जायके समुद्र में अपने को खोए देती हैं। समुद्र में जब मिल गई तब कहां है जमुना, कहां है सरयू, कहां है गोमती? वो तो परंपरा से गई, गंगा से गंगा फिर गई वहां, लेकिन नाम रूप तो विमुक्त हो गया। इसी तरह से विद्वान ये नाम रूपात्मक जगत जो नाम रूपाणी व्याकरवाणी है, इससे बिल्कुल जब अलग हो गया। अभी मैंने आपको बताया था यह मैं हूं, यह मेरा है, यह सत है, ये धारणा बन गई। यह मैं यह नहीं हूं, ये भी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि यह तो सब परिवर्तनशील है। आप लोग कह चुके मैं महान हूं, यह मेहमान है। तो यह मात्र शरीर संसार ठीक है, ये बात मान लेंगे। और ये भी बात जानने लायक है कि भाई मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी आज्ञा में नहीं चलता है। और ये भी नियम है कि जिसमें मेरा का टीका लगा होता है वो मैं नहीं होता है, ये सूत्र है। तो मेरा जिसमें कहोगे, जैसे मेरी किताब, तब किताब में थोड़ी हो गया, मेरा कलम, मेरा जहां जहां मेरा लगा हुआ है वहां मैं थोड़ी हो जाएगा। लेकिन यह सत नहीं है, यह बात बहुत देर में आती समझ। यहां उसी पर प्रश्न किया गया। यह माने माया, परा परा माया है, और ये उस माया से परे है। उस माया से जो परे हो जाता है उसको कहा गया, यथा नद्यः चंद्रमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय विद्वान तथा विद्वान। उसी तरह से विद्वान वो है, उसकी परिभाषा की गई, नाम रूपाद विमुक्तः परात परम पुरुषम। जो के त्यों शब्द हैं वही, वहां भी परात परम पुरुष है, यहां भी परात पर पुरुष। याति विद्वान माने विद्वान वह है जो नाम रूप से विमुक्त होकर के, जगत से विमुक्त होकर के जगतपति की शरण पहुंच गया, माया से निवृत्त हो गया। ये मायामय जगत है, ये है नहीं, दिख रहा है। तो ये बात जब समझ में आ जाएगी तो वो बात जो था कि यह सत नहीं है, ये तब समझ में आएगी। तब तक यह मैं नहीं हूं, ये भी बात समझ में आ जाएगी। यह मेरा नहीं है, ये भी बात समझ में आ सकती है। लेकिन ये सत नहीं है, ये तो बात तभी समझ में आएगी जब मायामय जगत से बुद्धि हट जाएगी। अब बुद्धि हटाओ, तब तक हम महाराज जी से फिर एक प्रार्थना करेंगे कि दो शब्द आशीर्वाद दे देंगे। अब तो थोड़ा ही समय रह गया, तो हमारी प्रार्थना है कि आप लोगों की भी तो है ना। हाँ ले, इतने लोगों की प्रार्थना है, थोड़ा भाई, अरे कुछ आशीर्वाद हो जाएगा थोड़ा। एक तो आपने कृपा की, इसलिए हमने सबसे प्रार्थना करवाई।
हरे ओ विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दो मिनट भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करें। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परम श्रद्धे अर्चनीय वंदनीय आचार्य जी महाराज, समुपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती देवियों, महाराज जी के द्वारा बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ हितकर उपदेश आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कैवल्य उपनिषद जिसकी व्याख्या महाराज जी कर रहे हैं। कैवल्य अर्थात वह मोक्ष जिसको प्राप्त करके व्यक्ति फिर से संसार बंधन में नहीं बंधता है, उसका यह उपनिषद है। कैवल्य प्राप्ति कराने का जो उपनिषद है उसका नाम है कैवल्योपनिषद। तो उस कैवल्योपनिषद के अंतर्गत आप सब लोगों ने श्रवण किया होगा कि इसमें प्रतिपादित जो ज्ञान है और कैवल्य की प्राप्ति जो मोक्ष है उसकी योग्यता व्यक्ति में किस प्रकार से होनी चाहिए। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद यतयः शुद्ध सत्व, ये प्रारंभ में ही आया। यदि आप इसको भूल जाएंगे, इसको अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तो फिर सुनते जाइए या पढ़ते जाइए, उसका जो लाभ अपने को प्राप्त करना है वो हम नहीं कर सकते। यह कैवल्योपनिषद का मंत्र है। तो इस पर विचार किया होगा आप लोगों ने कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वेदांत में जो विज्ञान है उसका जो है सुनिश्चित अर्थ प्राप्त करने के लिए वेदांत विज्ञान भी है। तो विज्ञान में दोनों बातें होती है, प्रैक्टिकल और थ्योरी, तभी वो विज्ञान कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। तो यह जो वेदांत है ये विज्ञान है, इसमें केवल है प्रैक्टिकल नहीं है या केवल थ्योरी नहीं है। हम केवल पढ़ते जाएं या सुनते जाएं तो उसके थ्योरी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन अनुभव करने के लिए उसका प्रयोगात्मक रूप ग्रहण करना पड़ेगा, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं। उसको अपने ऊपर घटाना पड़ेगा, उसको प्रयोग करके देखना पड़ेगा। हम ही उसके प्रयोगशाला बनेंगे, लेबोरेटरी हम ही है कि जो हमने श्रवण किया है वो घटित होता है कि नहीं, और वो घटित हो गया तो फिर साक्षात्कार हो गया। तो इस प्रकार से जो वेदांत विज्ञान है उसका सुनिश्चय करने के लिए अपने में योग्यता बताया है ऋषि ने, संन्यास योगात। पहले तो संन्यास योग से युक्त होना पड़ेगा। ऐसा एक वचन और भी आया है, संन्यस्तम श्रवणम कुर्यात्। श्रवण करने की योग्यता किसमें है? बोले जिसके पास कान है। तो कान वाले सब श्रवण करने की योग्यता रखते हैं क्या? अब कान है तो सुनेगा ही, लेकिन है वेद के अंतर्गत बताया कि नहीं, श्रवण करने की योग्यता उसमें है जो सन्यासी है। सन्यासी बन करके श्रवण करो, संन्यस्तम श्रवणम कुर्यात्। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि हमको इतने साल हो गए सुनते सुनते थक गए, लेकिन जैसा लोग बताते वैसा कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन तुमने श्रवण कैसे किया? संन्यस्त होकर के श्रवण किया कि और कुछ होकर के श्रवण किया? तो जब ये कहा गया कि संन्यस्तम श्रवणम कुर्यात्, संन्यस्त होकर के श्रवण करना चाहिए, तो वो तो आपने विधि का पालन नहीं किया। इसका मतलब कल से सब गिरुआ कपड़ा पहन करके आएंगे, ये संन्यस्त का मतलब नहीं है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, ये मन का संन्यास है, काम्य कर्मों का त्याग जिसने कर दिया है वो सन्यासी है। तो इस प्रकार आप बाहर के नहीं, दिखावे वाले नहीं, अंदर के काम्य कर्मों का परित्याग करके सन्यासी बन करके श्रवण करो तो ये लाभ आपको होगा। तो सन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्व, जिसने सन्यास योग को प्राप्त कर लिया है, जो सन्यासी हो गया है, तो जैसा अभी बता रहे थे आपको कि वो सन्यास योग क्या है, तो ऐसा सन्यास योग से युक्त होने वाला यति, जो यतन करता है, प्रयत्न करता है अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, शुद्ध सत्व, सत्व मतलब अंतःकरण, अंतःकरण को ही ज्यादातर सत्व शब्द से अपने यहां इन शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में कहा गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शुद्ध सत्व बनने के लिए भागवत भी आप सब लोग श्रवण करते रहते हैं, उसमें भगवान ऋषभ देव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते बिड़भुजा में तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो ननंतम। भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है वो उन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है जो कीट पतंग इत्यादि को भी प्राप्त होता है, सूकर कूकर को भी प्राप्त होता है, ये जो विषय भोग है ये तो सभी प्राणियों को प्राप्त है, गंदी नाली में रहने वाले जो कीड़े हैं वो भी विषयों का भोग कर लेते हैं। तो हमें ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ये उससे भी जो श्रेष्ठ सुख है, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ब्रह्म में जो कुछ भी है सब अनंत है, इसका कोई अंत नहीं ला सकता है। तो वह ब्रह्म जो सुख स्वरूप है उसका सुख भी अनंत है, कभी घटने वाला नहीं है, कभी क्षय को प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रह्म का जो सुख है, ब्रह्म में जो सुख है, जो सुख स्वरूप ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार करने के लिए ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, तो ऐसा समझना चाहिए। तो उस ब्रह्म सुख का साक्षात्कार करके कैसे तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेद, तो सत्वम शुद्धेद, हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। किस प्रकार से शुद्ध करें, बोले तपस्या के द्वारा, तपस्या करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। वह तपस्या क्या चीज है, पंचेंद्रिय निग्रह तपः, जहां भी रहते हैं गृहे भी पंचेंद्रिय निग्रह तपः, संसार में रहते हुए, घर में परिवार में रहते हुए, जो अपने इन्हें पांच इंद्रियों के ऊपर, जिसको ज्ञान इंद्रिय कहा गया है, उस पर जो नियंत्रण रखता है, उसका संयम जिसके ऊपर है, तो जो इन इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने से रोक करके रखता है, इस प्रकार की नियंत्रण शक्ति करने से तपस्या बन जाती है। ऐसी तपस्या करके व्यक्ति जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, इसका मतलब यही हुआ कि अंतःकरण के अशुद्ध करने वाले चीज क्या है, वही संसार के विषय जो हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, तो उन ग्रहण के करने से हमारा अंतःकरण अशुद्ध होता है, उसमें विकार आदि आते हैं। और जब हम इंद्रियों को रोक देते हैं, विषयों से उनका संपर्क नहीं होने देते हैं, अंतर्मुखी वृत्ति बना करके रखते हैं, तो हमारा अंतःकरण फिर अशुद्ध नहीं होने पाता है, और उपासना आदि करते रहते हैं तो अंतःकरण शुद्ध भी हो जाता है। तो जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं तभी इस कैवल्योपनिषद का जो अर्थ है वो हमारे जीवन में घटित होता है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वः, वही उसे परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करता है और उसे कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह साधन रूप से प्रारंभ में ही बता दिया है। कैवल्योपनिषद जब प्रारंभ किया तो उसमें बताया कि एक तो संन्यास योग से युक्त होना पड़ेगा। कई प्रकार के योग होते हैं, भगवत गीता आप पढ़ते हैं उसमें कितने प्रकार के योग बताए गए हैं कि ध्यान योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ये सब है योग है। लेकिन यहां पर ऋषि ने बताया संन्यास योग। संन्यास भी एक प्रकार का योग है और उसे संन्यास योग से युक्त होना पड़ेगा। श्रवण करने की योग्यता ही उसमें है, श्रवण करने का अधिकार ही उसको प्राप्त है जो संन्यस्त है। संन्यस्तम श्रवणम कुर्यात, तभी उसको उसका लाभ प्राप्त होगा। नहीं आप शिकायत करते रहोगे, हमको 10 साल हो गया, हमको 15 साल हो गया, हमको इतना साल हो गया, सुनते सुनते थक गए, कितना और सुने। लेकिन जिस ढंग से श्रवण करना चाहिए उस ढंग से तो श्रवण नहीं किया। अब आगे से आप लोग वैसे ही श्रवण करोगे और अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए जो उपाय बताया गया तपस्या, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। विषय आदि हैं, ग्रहण कर सकते हैं लेकिन उनके प्रति त्याग की वृत्ति बना करके, जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं तो वही ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, ऐसा अनंत स्वरूप है ब्रह्म का और उसका सुख भी उसी परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार व्यक्ति करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।